اس پروگرام کے اخراجات جوائس مر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔
اگر آپ کسی اور کی مانیں نہیں تو اس میں کچھ برائی نہیں۔ میں اپنے پاسٹر کی بیوی جیسے بننے کی کوشش کرتی تھی اور میں اس حد تک چلی گئی کہ میں نے آہستہ بولنا شروع کر دیا۔ میرا مطلب ہے میں نے ایسا کیا، میں نے اپنی آواز کو دھیما کر کے اس کی طرح پیار سے بولنا شروع کر دیا اور حتیٰ کہ میں نے اس کی مانند چلنا بھی شروع کر دیا۔ میری برابر والی پڑوسن سوزی ہوم میکر۔ میرا مطلب ہے کہ اگر آپ سچائی جاننا چاہتے ہیں، اگر ڈیو کو شرٹ پر بٹن لگانا ہوتا تو وہ خود سے لگا لیتے، کیونکہ اگر میں لگاتی تو شاید وہ پھر گر جاتا۔ اور میں بٹن لگانے کی بھی کوشش کرنے لگی اور دوسرے کام بھی، اور مجھے اس بات سے نفرت تھی میں وہ نہیں تھی۔ سنیے، وہ میں نہیں تھی۔ اگر آپ وہ بننے کے لیے جو حقیقت میں آپ ہیں آزاد نہیں، تو آپ آزادی کا مطلب نہیں جانتے۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ گناہ کرنے کے لیے آزاد ہیں اور ہر وہ کام جس کی بائبل ممانعت کرتی ہے۔ ظاہر ہے خدا کے کلام کے مطابق ہماری کچھ اخلاقی ذمہ داریاں بھی ہیں جو ہم نے پوری کرنی ہے، لیکن میں آپ کی شخصیت سے متعلق بات کر رہی ہوں کہ آپ کیا پسند کرتے ہیں اور کیا ناپسند، کس اسٹائل کے کپڑے پہننا پسند کرتے ہیں، آپ کو بال کس طرح کے پسند ہیں۔ آپ کو کسی اور کی مانند بننے کی ضرورت نہیں۔ سنیے، اگر میں کہوں کہ آپ میں سے کتنے ہیں جو میں نے کہا اسے واقعی دیانتداری کے ساتھ پہلے سے غور سے سننا چاہیے کہ آپ واقعی اپنے آپ کو زیادہ پسند نہیں کرتے۔ اچھا، بڑے ٹھیک لوگ بیٹھے ہیں۔ دیکھا یہ بات کس قدر بھیانک اور قابل افسوس ہے۔ آپ یسوع کے خون خریدے ہیں، اس نے سوچا آپ اس لائق ہیں کہ اپنا خون دے کر آپ کو خریدا جائے۔ آپ اپنے نہیں ہیں، اب آپ اس کے ہیں۔ اور میں چاہتی ہوں کہ آپ یہاں سے جائیں اور چاہتی ہوں کہ دعا کریں کہ خدا آپ کی مدد کرے کہ آپ اپنے منہ سے کبھی بھی ایک منفی لفظ اپنے بارے میں نہ نکالیں۔ یہ انتہائی بدترین بات ہو سکتی ہے جو آپ اپنے متعلق کہہ سکتے ہیں، جیسے میں احمق ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی، میں کبھی کچھ نہیں کر سکتی، میں موٹی ہوں، میں بھدی ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ میں اس بات کو روحانی جنگ کے ساتھ جوڑتے ہوئے آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتی ہوں، اور یہ واقعہ حقیقت میں میرے ساتھ پیش آیا۔ میں اس میں کچھ بھی بڑھانا اور گھٹانا نہیں چاہتی۔ خدا مجھے راستبازی سے متعلق سکھا رہا تھا، اور میں جانتی ہوں کہ اچھا ہے کہ جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ میں نے کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ لا علمی میں کچھ کرنا اور پہلے اس سے متعلق جاننا اور پھر کرنا دو مختلف باتیں ہیں۔ یہ ایک خطرناک بات ہے، کیونکہ جب آپ کے پاس حکمت کی کمی ہو تو خدا آپ کو فضل بخشتا ہے، لیکن ایک بار جب آپ کو علم بخش دیا جاتا ہے تو پھر آپ پر جو کچھ آپ جانتے ہیں اس کی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے۔ آپ گھر جا کر ویسی زندگی نہیں گزار سکتے جیسے آپ پہلے گزارتے تھے۔ آپ کے خیال میں آپ یہاں دل بہلانے کے لیے آئے ہیں۔ جب آپ گھر جائیں گے تو آپ خدا کے سامنے زیادہ جواب دے ہوں گے، اور اب آپ نے چیزیں جان لی ہیں۔ ابلیس ان میں آپ کو آزمائے گا اور وہ وہاں موجود ہوگا۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے ہاں ایک نیا بیبی آیا جو اب اس دسمبر میں 40 برس کا ہو جائے گا۔ یہ کتنے برس پہلے کی بات ہے۔ خدا مجھے یہ تمام باتیں گہرے طور پر سکھا رہا تھا جو میں ابھی آپ کو سکھا رہی ہوں۔ آپ میں سے کچھ لوگ اس بات سے واقف ہیں، مجھ سمیت جو یہ بات جانتے ہیں ان کو بھی دوبارہ سننے کی ضرورت ہے۔ میں اور ڈیو اس صبح کسی بات پر جھگڑ رہے تھے۔ میں کچن میں ٹیبل کے پاس بیٹھی تھی اور بچے کو دودھ پلا رہی تھی، और हमारे दरमियान किसी बात पर बहस और तकरार हो रही थी और बेशक वो मुझे कह रहे थे कि मैं कसूरवार हूँ और मैं इस बात की जिम्मेदारी लेना नहीं चाह रही थी। जब वो काम पर चले गए, मैं वहां बैठी अपने बच्चे को दूध पिलाते हुए बुलंद आवाज में कह रही थी, ठीक है, सब मेरा ही कसूर है, मैं कभी भी कुछ अच्छा नहीं कर सकती, मैं एक बहुत बड़ी तबाही हूँ, अहमक और बेवकूफ हूँ, मुझ में कोई अच्छाई नहीं। और मैंने महसूस किया, मेरा मतलब है, मैं आपको बता सकती हूँ कि मैं उसे देख सकती थी, लेकिन मैंने उसे अपनी इन आंखों से नहीं देखा। इबलीस की मौजूदगी मुझे अपने हिसार में लेने की कोशिश में थी और मेरे दिल में खुदा का खौफ आया और मैं जिस कदर बुलंद आवाज में कह सकती थी, मैंने कहना शुरू कर दिया, मुझ में खुदा की रास्तबाजी है, यीशु मसीह के वसीला से मैं खुदा की रास्तबाजी हूँ, यीशु के वसीला से मुझ में खुदा की रास्तबाजी है। और जितना मैं ये कहती जाती, उस कदर मुझे महसूस होता कि उसकी मौजूदगी वहां से खत्म हो रही है और कमरे से बाहर जा रही है। हमें अपने लफ्जों में मोहतात होने की जरूरत है। हमने इस पर बहुत दफा कलाम सुना, मौत और जिंदगी जबान के काबू में है और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। हम अपने बारे में अहमकाना बातें कहकर इबलीस के लिए दरवाजे खोल सकते हैं, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपनी जिंदगियों के लिए और अपने खानदानों के लिए। लिहाजा मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगी कि जब आप घर जाएं तो अपने मुतालिक वो बातें कहें जो खुदा आपके मुतालिक कहता है, वो ना कहें जो इबलीस आपके कानों में सरगोशी करता है। आप अहमक नहीं है, आप निकम्मे नहीं है, आप सरापा नाकामी नहीं है। आपके पास खुदा की दी हुई सलाहियत और दानिश है, हिकमत है और खुदा आपसे मोहब्बत करता है, खुदा आपके लिए है। सुनिए, मेरा मतलब है, अगर आप जानते कि फरिश्ते आपके साथ हैं। एक बार मैं फिनिक्स में कलाम सुना रही थी, एक औरत आई और किसी के वसीला ये पैगाम मुझ तक पहुंचाया और उसने कहा, मेरा शौहर एक गैर ईमानदार शख्स है और वो कभी भी ऐसी किसी जगह पर नहीं आया, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करता है, लिहाजा उसने मुझे हैरान कर दिया और मेरी बर्थडे पर मुझे यहां लाया और वो यहां मेरे साथ कॉन्फ्रेंस में रुका हुआ था। और उसने कहा, मैंने एक सेशन के दौरान देखा कि वो कांप रहा है और रो रहा है और मैंने कहा, आपको क्या हुआ है? और उसने कहा, क्या तुम देख नहीं रही, क्या तुम उनको देख नहीं सकती? उसने कहा, आप क्या बात कर रहे हैं? और कहा, वो देखो, वो बड़े बड़े आदमी जिन्होंने सफेद लिबास पहने हुए हैं, जो ऊपर वहां जॉयस के साथ हैं, क्या ये क्वायर के लोग हैं, ये कौन हैं? और उसने क्या देखा कि जब मैं अपनी कुर्सी से उठकर कलाम सुनाने के लिए अपनी बाइबल के साथ पुलपिट पर आई, उसने ताकतवर आदमियों का एक ग्रोह देखा जो सफेद लिबास में मलबूस थे और वो मेरे गिर्द नीम दायरे में खड़े हो गए। गौर करें, ये एक गैर ईमानदार शख्स है। और उसने कहा, और जब उसने अपना मुंह खोला और बाइबल को ऊपर उठाया, उन सब ने अपनी बड़ी बड़ी तलवारें अपनी मयान में से बाहर निकाली और उनको ऊपर करके इस तरह खड़े हो गए। हमें माफूकुल फितरत बातों में ज्यादा ईमान रखने की जरूरत है। हम जो अपनी आंखों से नहीं देख सकते, हमें उस पर यकीन करने की जरूरत है। हमें इस बात का एहसास करने की जरूरत है कि खुदा मौजजात का खुदा है और ये कि बदरूहें हमारे दिमाग पर कब्जा करने की कोशिश में होती हैं, वो हमारी जिंदगियों को खराब करना चाहती हैं, लेकिन हम उनको बांध सकते हैं, हम उनके खिलाफ मजाहमत करके उन्हें निकाल सकते हैं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे पास यीशु में रहते हुए इस तरह के तमाम इख्तियारात मौजूद हैं। सुनिए, आपको एक आम जिंदगी गुजारने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप कोई आम इंसान नहीं। हमारे पास रूहुल कुदस की माफूकुल फितरत नेमते हैं, जैसे के रूहों का इम्तियाज और नबूवत की नेमत, गैर जुबाने बोलने की नेमत। आप कहेंगे, गैर जुबाने बोलना? मुझे ना बताएं कि आप गैर जुबान बोलती हैं। हाँ, मैं बोलती हूँ और मुझे खुशी है। खैर जॉइस, मुझे आपके मुतालिक ये नहीं मालूम था, मैं नहीं जानती कि मैं दोबारा आपको देख सकूंगी या नहीं। दुनिया में आज ऐसा कुछ हो रहा है, अब अगर आप गैर जुबान में दुआ नहीं करना चाहते तो ठीक है, मैं आप पर इस बात से खफा नहीं होंगी, लेकिन आप भी मुझ पर खफा ना हो कि मैं रूहानी भूख और प्यास रखने वाली बंदी हूँ और मैं हर वो चीज चाहती हूँ जो खुदा मुझे दे सकता है। सुनिए, और अगर आप रूह की मामूरी से मुतालिक कुछ नहीं जानते और रूह की नेमतों के बारे में कुछ नहीं पता तो आपको इस पर मुताला करने की जरूरत है। खुदा के साथ अकेले में वक्त गुजारें और उससे कहें, जो कुछ मेरे पास नहीं और जो मैं हासिल कर सकती हूँ वो मैं चाहती हूँ, और मुझे पाक रूह की वो मामूरी अता कर और मुझे वो नेमते बख्श दे जो मुझे आज के इस दौर में ये अहमकाना जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है, और वो भी कुवत और फतह मंदी के साथ। और अगर आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही तो ठीक है, क्योंकि अगर आपके अंदर खुदा की भूख और तड़प होगी तो आपको पता चल जाएगा। आमीन। 70 की दिहाई में मैं अपनी जिंदगी में फतह के लिए बड़ी भूखी और प्यासी थी और मैं बहुत थक चुकी थी। हर वीकेंड पर चर्च जाना, घर वापस आना और कोई भी तब्दीली नहीं। मैंने खुदा से कहा, कोई चीज है जिसकी मुझ में कमी है। सुनिए, आप में से अक्सर मुझसे ये सवाल पूछते रहते हैं। खैर, आपको चर्च में किसी बड़ी बेदारी की जरूरत नहीं, आप खुद अपने लिए बेदारी मांग सकते हैं। अगर आप अपने अंदर खुदा की भूख रखते हैं आप बेदारी पा सकते हैं। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, हर रोज दुआ करना शुरू करें, खुदा मुझे पाक रूह से भर दे, मुझे पाक रूह से मामूर कर दे, मुझे पाक रूह की माफूकुल फितरत नेमतों से भर दे। जैसा तू चाहता है मुझे वैसा ही इस्तेमाल कर। अच्छा है कि आप ऐसा चाहते भी हो। क्योंकि जब खुदा के साथ आप कोई अहद बांधते हैं आप उससे फिर नहीं सकते। चर्च में खड़े होकर ये ना गाएं, मैं तेरे लिए सब कुछ छोड़ता हूं, अगर आप ऐसा कर नहीं सकते। सुनिए, मैं नहीं चाहती कि आप घर जाकर फिर वैसे ही बन जाएं। मैं चाहती हूं आप घर जाएं तो पाक रूह से मामूर हो और आप कभी भी जिन बुरे हालात में से गुजरे हैं उन पर मुस्कुराएं कि अभी भी मोहब्बत में चल रहे हैं और दूसरों के साथ मेहरबानी से पेश आएं। जब आपको लगे कि आपकी दुनिया बर्बाद हो रही है उसके लिए कुव्वत चाहिए। अब मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूं जो हमें यशवा की किताब में मिलती है, और खास तौर पर यशवा 5 बाब में। बनी इसराइल मिस्र से निकले तो वो लगभग 60 लाख के करीब थे। खुदा उनको मऊदा सरजमीन पर आसान रास्ते से नहीं लेकर गया। बाइबल इसकी वजह बताती है, उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो जंग के लिए तैयार ना थे। लेकिन ये क्या वजह हो सकती है? खुदा उनको जंग में नहीं लेकर जा रहा था, वो उनको वादा की हुई सरजमीन पर लेकर जा रहा था। लेकिन आज सुबह मैंने कहा, उस जमीन पर कब्जा के लिए जिससे मुतालिक उसने कहा, जाओ और उस जमीन पर काबिज हो जाओ। इन अल्फाज का मतलब ये था कि पहले वहां के रहने वालों को वहां से बेदखल करो। लिहाजा उन लाखों लोगों में से जो मिस्र से निकल कर आए थे, और उस बात ने मुझे बड़ा हैरान किया। सिर्फ दो, सब कहें सिर्फ दो, इस बड़े ग्रोह में से जो यर्दन से पार आए, सिर्फ दो लोग वादा की हुई सरजमीन में दाखिल हुए, और वो यशवा और कालिब थे। और वो सब लोग जो मिस्र से निकल कर आए वो बियाबान में हलाक हो गए। अब वो जो बियाबान में पैदा हुए वो यशवा और कालिब के साथ वादा की हुई सरजमीन में दाखिल हुए। लेकिन उन लोगों को 11 दिन का सफर तय करने में 40 बरस लगे। कोई और ऐसा है? खैर, मुझे निजात पाए हुए 20 बरस हो चुके हैं, मुझे इससे भी आगे जाना चाहिए था। क्योंकि आप नहीं गए, क्योंकि आप बार बार एक ही पहाड़ की गिर चक्कर काटते रहे हैं। खुदा से ये इल्तिजा करना बंद कर दें कि वो आपकी जान इस पहाड़ से छुड़ा दे। अभी फैसला करें कि आप मुश्किल हालात में से गुजरेंगे। खुदा के हिसाब में एक ही रास्ता है, मुश्किल हालात। अगर आप किसी चीज का सामना किए बिना जान छुड़ाकर भागेंगे तो आप उस पर गालिब नहीं आ सकेंगे। उसमें से गुजरना ही होगा और फिर आपको उसे फतह करने का तजुर्बा हासिल होगा और ये आपको अगले महास के लिए जो आपके सामने आएगा मजबूत बनाएगा। लिहाजा उनको अगले कस्बे में जाने के लिए यर्दन को पार करना जरूरी था जो कि यरीहू था। यर्दन उस वक्त तक दो हिस्से ना होता जब तक वो अपना पांव उसमें ना रखते। बहुत दफा आपको पता नहीं होता कि कौन सा समंदर खुदा आपके सामने ले आए जो उस वक्त तक दो हिस्से ना हो जब तक आप उसमें अपना पांव ना रख दें। बहुत सारे लोग अपना पांव उसमें नहीं रखना चाहते, वो उस वक्त तक इंतजार करते हैं जब तक के पहले इस बात का यकीन ना कर लें कि सब कुछ अच्छा होगा। जॉब के बाद मैंने फुल टाइम खिदमत करना शुरू कर दी और हमारे पास हर माह बिल अदा करने के पैसे ना होते, लेकिन मुझे वाकई महसूस होता कि मैं खुदा की रहनुमाई में चल रही हूं और क्या आप जानते हैं वो हमें मायूस नहीं करता। और जब मैं मुड़कर अपनी जिंदगी के उन सख्त तरीन बरसों पर नजर डालती हूं तो वहां मेरी जिंदगी के कुछ कीमती और बेहतरीन बरस भी थे, क्योंकि उन्हीं बरसों में मैंने सीखा कि खुदा वफादार है, उस पर भरोसा करना है। दाऊद को भी बादशाह होने के लिए मसा किया गया था, लेकिन इससे पहले कि वो बादशाह का ताज अपने सर पर पहनता उसे जाति जूलियत पर फतह हासिल करना पड़ी। खुदा ने उसे बादशाह बनने से 20 बरस पहले मसा किया था। हो सकता है आप बिल्कुल ये महसूस करते हो कि आपको किसी बात के लिए मसा किया गया है, लेकिन आप भी अभी तक जाति जूलियत का सामना करने को तैयार नहीं। हम अक्सर औकात उन पहाड़ों में फंस कर रह जाते हैं क्योंकि हम वो किरदार अदा नहीं करते जो खुदा हमें करने को कहता है। लिहाजा खुदा ने यशवा से कलाम किया और उसने कहा तैयार हो जाओ क्योंकि आज के दिन मैंने मिस्र की मलामत को तुम पर से ढलका दिया और कल यह मऊदा सरजमीन में दाखिल होंगे। आप जानते हैं कि मलामत एहसास जुर्म शर्मिंदगी और इल्जाम है। सुनिए, इसमें आप लोगों के लिए एक पैगाम है। वो असल में ये कह रहा है कि वहां पर तुम्हारे दुश्मन हैं जिन पर उनको फतह पानी है। अगर तुम इस सरजमीन को अपने कब्जा में करना चाहते हो तो फिर तुम्हें उन लोगों को वहां से बाहर निकालना होगा, वो नहीं कर सकते। इस बात को समझने की कोशिश करें, वो दुश्मन के साथ उस वक्त तक जंग नहीं कर सकते जब तक उनको यकीन ना हो कि एहसास जुर्म का शिकार नहीं और वो इल्जाम तराशी और नुक्ताचीनी से पाक है। इससे पहले कि वो जंग जीतते उनको जानने की जरूरत थी कि वो कौन थे। शायद आप समझ गए हो, लेकिन मैं नहीं जानती। मेरे बड़े बड़े ख्वाब थे, लेकिन मैं आपको बताती हूं कि मैं आज यहां खड़ी ना होती अगर मैंने बिलाआखिर 10,00,000 बार ये ना कहा होता कि मैं यीशु मसीह में खुदा की रास्तबाजी हूं। मैंने इसमें बहुत मुश्किल वक्त गुजारा क्योंकि मुझे एहसास जुर्म में रहने की आदत हो चुकी थी। जिस दिन मैं खुद को बुरा भला ना कहती वो दिन अच्छा ना गुजरता। मेरा मतलब है 40-50 बरस एहसास जुर्म में मुब्तिला रही और खुदा ने कहा क्या तू इससे ऊपर होकर सोचेगी, मुझे तेरी जरूरत है और सच कहता हूं तू इस हालत में मेरे लिए काम की नहीं। आप जानते हैं जब तक आप अपने बारे में बुरा सोचते रहेंगे और अपने ही खिलाफ होते रहेंगे और खुद पर ही नुक्ताचीनी करते रहेंगे खुदा आपके वसीले कुछ नहीं कर सकता। इससे पहले कि वो आपको घर भेजे वो आपके ऊपर से मलामत को हटाना चाहता है। मेरा मतलब है आप मेरी तरफ ऐसे देख रहे हैं। इससे पहले कि मैं ये समझती मुझे पैगाम चंद हजार मरतबा सुनना पड़ा। क्रिस केन 30 बरस की हुई तब उसे मालूम हुआ कि उसे लेकर पाला गया है। उसको ये बात मालूम नहीं थी कि वो और उसका भाई ले पालक हैं। फिर इसको ये भी पता चला कि उसकी सगी माँ उसके घर से सिर्फ 2 ब्लॉक के फासले पर उसके बचपन से रह रही है और जब वो उससे मिलने के लिए गई तो उसकी माँ ने उससे मिलने में कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की। उसके बर्थ सर्टिफिकेट से पता चला कि उसको कोई नाम नहीं दिया गया। क्रिस पहले से ही मिनिस्ट्री में थी और ये कलाम उसने पहले से सुन रखा था। उसने कहा खुदा ने मुझे मेरी मां के पेट में अपने हाथों से सूरत बख्शी भले वो कोई भी पेट हो, क्योंकि वो जानती थी कि मसीह में वो कौन है अगरचे ये बात उसके लिए तकलीफ देती, लेकिन इससे कोई कयामत नहीं आ गई। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूं? मैं कह रही हूं अगर आपको मालूम हो कि आप मसीह में कौन हो, तो आप ऐसी बातों में से आराम से गुजर सकते हैं। यहां खड़े होकर यह बात बताना कि मेरे बाप ने मुझसे मेरी नौ उम्री में 200 से जायद मर्तबा जिनसी ज्यादती की, मुझे परेशान नहीं करता। जानते हैं क्यों? वो जॉयस मर चुकी। जो आपके सामने इस वक्त खड़ी है वो नई मखलूक है। मसीह में मैं एक नई मखलूक हूं। वो जिसके साथ ये हुआ, मैं उसे बहुत पहले जानती थी, लेकिन अब तो वो मुझे याद भी नहीं। सुनिए, क्योंकि हर तरह की मलामत और शर्मिंदगी मुझसे हटा ली गई, लिहाजा मैं जानती हूं कि कैसे जाकर जो मेरा है उसे अपने कब्जे में करना है। इसलिए ये सारी रूहानी जंग ये बदलुओं पर चीखने चिल्लाने से कहीं ज्यादा है। ये जानने की जरूरत है कि आप मसीह में कौन हैं। ये इस वक्त खुदा के कलाम पर डट जाने का नाम है, जब लगे कि वो काम नहीं कर रहा। ये सीखना है कि अमन में कैसे जीना और चलना है, और सुलह करवाने वाले बनने का नाम है, और अमन को कायम रखना है। अब हमें ये सीखना है कि कौन सी जंग लड़नी है और कौन सी छोड़ देनी है। अपनी जंग का इंतखाब करें। सुनिए, ये चीजें सीखने का नाम है। जैसे मैं कभी अपने मुतालिक बुरा लफ्ज अपने मुंह से नहीं निकालूंगी। बरसों गुजर गए हैं कि जब से मैंने अपने मुंह से अपने लिए कोई मनफी बात की हो, और मैं दुआ करती हूं कि खुदा मुझे फजल दे कि मैं ऐसा ना करूं, क्योंकि यह भयानक बात है। क्या कोई मुझे सुन रहा है? क्या किसी को मुझे सुनने की जरूरत है? और मैं जानती हूँ सुनने वालों से ये कमरा भरा हुआ है जो दुखी हैं, और वो लोग जो ये टीवी पर या किसी और शक्ल में देखेंगे या किसी तरह आप तक पहुंच जाएगा। आप दुखी हुए हैं और आप नहीं जानते कि आप मसीह में कौन हैं। और दुरुस्त होना एक फर्क बात है, जो कि अच्छा रवैया रखने की बदौलत है, और रास्तबाजी एक फर्क चीज है, जो खुदा की तरफ से हमारे लिए एक तोहफा है। ये यसु ने जो कुछ हमारे लिए किया, इसकी बदौलत है। दूसरा करंथियों 5:21, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो नया मखलूक है। पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नहीं हो गईं। मैं कहना चाहूंगी आप एक नई रूहानी मिट्टी बन गए हैं, और अगर आप खुदा को इजाजत देंगे कि वो आपको गूंदे और सवारे, जैसा कि यर्मिया की किताब में कुम्हार के चाक का जिक्र है। पहला बर्तन जो बनाया गया वो बिगड़ गया और बर्बाद हो गया, और कुम्हार ने उसे रद्द कर दिया, और फिर उसे जैसा चाहता था वैसा बनाना शुरू किया। और सुनिए, हो सकता है खुदा आपकी जिंदगी में दाखिल होकर कुछ चीजों की उखाड़ पछाड़ करे, लेकिन वो नए सिरे से वो चीजें बनाएगा जो वो चाहता है। हमें अपने लफ्जों और ख्यालों से मुतालिक बहुत ज्यादा मोहतात होने की जरूरत है। अपने मुतालिक या अपने मुस्तकबिल के बारे में कुछ बुरा बोलकर दुश्मन के लिए दरवाजे ना खोलें। जो कुछ खुदा आपके बारे में कहता और सोचता है उसके साथ मुत्तफिक होना सीखें। जैसा कि मैंने पहले कहा, जानिए कि आप मसीह में क्या हैं।